આત્માનું શાસન લેક્ચર નંબર 3 ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણ નમો લક્ષ્મીનિવાસનિલયં વિલીનવિલયં નિધાય હૃદિ વીરં આત્માનુશાસનમહં વક્ષે મોક્ષાય ભવ્યાનામ. આચાર્ય શ્રી ગુણભદ્ર સ્વામી રચિત યહ આત્માનુશાસન નામક ગ્રંથ હૈ ઔર ઇસ પર સહજાનંદજી જો શુલ્લક મનોહરજી વર્ણી કે પ્રવચન હૈ. इस पुस्तक प्रथम पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर हम आ गए हैं. ये पहली पुस्तक में 1, 2 और 3 भाग है और दूसरे में 4, 5, 6 भाग है. तो यहां हम 8वें पेज पर आते हैं. नीचे का पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं. ममत्व में रुदन के अनिवारण का प्रतिबोधन. कुछ नहीं समझे ना? यहाँ कहते हैं, एक साधु महाराज जंगल में राजा को मिले. गर्मी के दिन थे, नीचे धूप ऊपर धूप. राजा को दया आई. राजा बोला, महाराज आपके लिए हम एक छतरी देना चाहते हैं ताकि आपके ऊपर की धूप बच जाए. साधु ने कहा, अच्छी बात, लेकिन छाते से ऊपर की धूप तो बच जाएगी, किंतु नीचे की धूप कैसे बचेगी? तो राजा ने कहा, महाराज हम रेशम के जूते बनवा देंगे. ठीक है, पर सारा शरीर नंगा रहेगा तो धूप की लपट कैसे बचेगी? तो महाराज कपड़ा बनवा देंगे. अच्छा राजन, ठीक है, पर यह तो बताओ, यह अच्छे कपड़े पहनकर पैदल कैसे जाएंगे? महाराज एक मोटर ला देंगे, उसका खर्चा कैसे चलेगा? उसके लिए 5 गांव लगा देते हैं. ठीक है राजन, पर यह तो बताओ कि खाने की फिर कौन पूछेगा? फिर तो मुझे कोई तिष्ठ तिष्ठ न कहेगा. तो महाराज आपकी शादी करा देंगे. वह स्त्री रोटी बनाया करेगी, इसके लिए 3 गांव और लगा लीजिए. ठीक है, पर एक बात और पूछना चाहते हैं कि बच्चे तो होंगे ही, और उनमें से कोई बच्चा गुजर जाएगा तो फिर कौन रोएगा? तो राजा बोला कि रोना तो आपको ही पड़ेगा, हम लोग न रो सकेंगे. जिसको ममता है रोवेगा वही. ये ममता की बात बता रहे हैं ना. ममत्व में रुदन, ममत्व है तो रोना होगा ही होगा, उसका अनिवारण, उसको टाल नहीं सकते. क्योंकि हमने पढ़ा तो क्या बताने जा रहे, कुछ पता नहीं चला था. यहाँ क्या कहते हैं, जिसके ममत्व भाव है उसको तो रोना अनिवार्य है उसके लिए. तो जिसको ममता है रोवेगा वही. चाहे व्यवहार में समझाने वाले अनेक आ जाए, व्यवहार में यानी कोई गुजर जाता है तो बहुत सारे आते हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन कष्ट वही भोगेगा जिसका ममत्व परिणाम है. ज्ञान गति, यह जीव कैसी अमित प्रभुता का स्वरूप वाला है. अमित यानी उसका मेजरमेंट नहीं है, माप नहीं है, अमाप, जिसको हम मापते नहीं, गिन नहीं सकते. तो यह जीव कैसी अमित प्रभुता का स्वरूप वाला है, यानी वो प्रभुत्व स्वभावी है. प्रभुत्व भी एक उसका गुण है, प्रभुता. किसी प्रकार की इस आत्मा में कमी नहीं है, यानी मैं परिपूर्ण हूँ, स्वयं पूर्ण हूँ, अपने आप में वैभवशाली हूँ, परंतु फिर भी इस जीव को आशा तृष्णा पर पदार्थों को पाने की जो इच्छा है, क्यों है? वो आ जाएगा तो मैं संपन्न हो जाऊंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा. अभी तो मैं कमी हूँ मेरे पास, तो कितना धन आने पर मेरी पूर्ति हो जाएगी? उसमें तो कोई लिमिट नहीं ना, जितना आए तो उतना, और चाहे 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 ये जो चलता है, चाह तो चल ही रही है। तो कहते कि इस किसी भी प्रकार की इस आत्मा में कमी नहीं है, लेकिन व्यर्थ के, व्यर्थ ने बेकार के मोह परिणाम में भ्रम बना लिया है। ये सारी उसने कल्पनाएं बना ली है, भ्रम बना लिया है, मान लिया है खोटे में खोटा, और किसी को अपना मान लिया और बाहरी चीजों से अपना बड़प्पन समझ लिया। अमुक ऐसा घर हो तो मैं बड़ा कहलाऊंगा, कौन सी कार है आपके पास, वो खटारा कोई नहीं चलेगी, तो मेरी क्रेडिट बढ़ जाएगी समाज में। तो कहते हैं समाज में मैं अच्छा बड़ा कैसे कहलाऊंगा, उसके लिए क्या आवश्यक चीज है? तो कहते बाहरी चीजों से, ये सभी बाह्य चीजें हैं, कपड़े हैं, गहने हैं, बैंक बैलेंस है, घर है, ये सब बाहरी चीजें हैं, इससे तो आत्मा का कोई संबंध नहीं। अरे शरीर से भी संबंध नहीं है, शरीर से मैं बड़ा कहलाऊंगा, कोई पहलवान कहलाऊंगा, या अच्छा जिसको मैं सबसे सुंदर कहलाऊंगा, ये तो बाहरी चीज है, इससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। आत्मा तो अपने सभी अनंत गुणों से परिपूर्ण है और सभी जीव समान है, इसमें देखेगी तो बड़ा छोटा उसमें कुछ है ही नहीं है। तो कहते बाहरी चीजों से अपना बड़प्पन समझ लिया, यह व्यर्थ का काम इस जीव को परेशान किए हुए है। ये परेशानी उसने स्वयं खड़ी कर दी है, और वो भी कल्पनाओं में। भीतर में ज्ञान का उजाला न हो तो यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कितनी भी चीजें मिल जाए, कभी उसके तो अभी बस हो गया, बहुत, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी होता ही नहीं, उसके तो चलती रहते। और ज्ञान ऐसी चीज है, उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। ये तो ये हमारा सहज स्वभाव है। कोई यह जाने कि हम गृहस्थी है, गृहस्थ के ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता जो पदार्थों को झोंका त्यों मान ले। ऐसी रुकावट गृहस्थी की परिस्थिति नहीं कर सकती। क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान के कोई लिए कोई रुकावट नहीं है। आप गृहस्थ है इसलिए ये जान नहीं सकते, या मुनि होने के बाद ही ये जान सकते, ऐसी कोई बात उसमें है ही नहीं। क्या बता रहे हैं? ऐसा भी किसी शास्त्र में नहीं लगा गृहस्थों को पढ़ने योग्य नहीं है, ऐसा कहने वाले मिलते हैं है? यहाँ क्या फिर पढ़ते, देखो ज्ञान ऐसी चीज है कि उसको कभी कोई रोक नहीं सकता। यानी अभी गृहस्थ अवस्था में है इसलिए ज्ञान नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। मुनि हो जाए तो ये ज्ञान हो, ऐसा भी कोई नहीं है उसके अंदर। इसलिए फिर पढ़ती ये वाक्य, कोई यह जाने कि हम गृहस्थी है, गृहस्थ के ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता जो पदार्थों को जो का त्यों मान ले। पदार्थ जैसे है वैसे उसको जानना मानना ये गृहस्थ के नहीं हो सकता। तो कहते ऐसी बात नहीं, यानी आत्मानुभव गृहस्थ की भी हो सकता है, ये बात होती है ना यहाँ पर क्योंकि जब पदार्थों का जो को त्यों मानना कार्य गृहस्थ में भी हो सकता है। तो कहते ऐसी रुकावट गृहस्थी की परिस्थिति नहीं कर सकती है, यानी वो घर में रहने वाला है इसलिए ज्ञान नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान द्वारा ज्ञान का काम करेगा ही। चाहे कोई किसी स्थिति में रहे, जो ज्ञान करना चाहे उसे ज्ञान हो सकता है। जो ज्ञान न करना चाहे वह निर्ग्रंथ दिगंबर का भेष भी बना ले तो भी उसे ज्ञान नहीं हो सकता। देखो ये भेष की बात है, ये दिगंबर भी भेष, कहते कोई वस्त्र नहीं है ना तो भेष काहे का, कोई ड्रेस, यानी ड्रेस किसको कहेंगे, या कोई विशिष्ट कपड़ा पहना, सफेद हो या लाल हो या जो कोई लंगोटी हो या चादर हो। तो कहते ये दिगंबरत्व ने कोई कपड़ा नहीं, यही भेष बना लिया। तो चाहे निर्ग्रंथ दिगंबर का भेष भी बना ले, भेष क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान आत्मज्ञान तो हुआ नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाना नहीं है, उन्होंने माना नहीं है। तो कहते कि चाहे बाह्य में मुनि दीक्षा अंगीकार की है उन्होंने, फिर भी उसे ज्ञान नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। ये डंके की चोट इन्होंने जो कुछ समाज में चलता है, कल बात ये भी आई थी, आप पढ़ लेना, कि ऐसे मुनियों के गुरुओं के वहाँ से लोग दूर भागते, क्यों? जो दिखता है उसको नेम देते, कुछ ना कुछ, ये नियम लो, वो नियम लो, ये करो। आत्मलाभ में कठिनाई का अभाव, क्या कहते हैं? आत्मलाभ होने में कठिनाई है, ऐसा बताएं? हाँ, कठिनाई नहीं है, यानी वो सहज है, सरल है। भैया, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि जैसा है वैसा मानने में क्या कठिनाई है? हम तो जैसा नहीं है वैसा सब कुछ मान लेते हैं, वो सबसे कठिन है, और हम इतने उसके अधीन हो गए हैं तो कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं। देखिये, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ यानी सही ज्ञान कर लेना कोई कठिन बात नहीं है, कठिन बात तो पर की व्यवस्था कर लेना है। और सारी दुनिया के व्यवस्थापक हम हो गए, सबको ठीक ठाक व्यवस्थित रखने वाले। संपत्ति संचित करना कठिन है, दूसरों को मना लेना कठिन है, किंतु आत्म कल्याण कर लेना कठिन नहीं है। ये सबसे सरल बात तो यही एकमात्र है। दूसरी चीजें कभी कभी लगती है कि हमारे करने से हुई है, तो आपके करने से नहीं हुई है, उसका वैसा ही परिणाम होना था तब हुई है। कठिन तो यह है कि सब परवस्तुओं की घटनाएं हम कर ले, परवस्तुओं में कुछ बात कर सकना अनहोनी बात है, यानी परवस्तु में कुछ करना अपने हाथ की बात नहीं, वो उनके परिणाम के अनुसार उनमें होता रहता है। अनहोनी बात कठिन होती है। मैं विकल्प मिटाकर, विकल्प यानी कि ये कल्पनाएं कर रहा हूं अन्य चीजों के बारे में, तो इन विकल्पों को मिटाकर अपने आप में अपने स्वरूप को निहारता रहूं। निहारना यानी उसी को देखता रहूं। निहारना किसको कहते हैं? जैसे केवल हमने देख लिया, वो देखना नहीं, किसी को अच्छी तरह से देखते रहना, वो है निहारना। इसमें कौन सी कठिनाई है? 10 पैसे पैदा करूं, इसमें कठिनाई है, क्योंकि किसी की जेब से तो निकाले नहीं जा सकते हैं। घर के लोग प्रसन्न रहे, यह बात कठिन है, उन सब में कषाय है। हमने वो सुख यहां में देखा था, उसमें बताया था कि जहां कषाय मैच होती है वहां मैत्री हो जाती है, उनके और हमारे समान जो कुछ बातें होती है तो मैत्री भाव हो जाता है, और उनकी कषाय नहीं, उनकी कोई इच्छाएं अलग है और हमारी कोई अलग है तो उसमें शत्रुता हो जाती है। तो घर के हमारे परिवार में भी ऐसा होता है ना, कषाय मैच हो जाए तो अच्छा चलता है। यहाँ क्या कहते कि घर के लोग प्रसन्न रहे, यह बात कठिन है, उन सब में कषाय है, वे अपनी कषाय के अनुकूल परिणमेंगे। आप कहेंगे हमारे पुत्र बहुत आज्ञाकारी है, हमारे घर के सब हमारे बहुत मानते हैं, तो वो उनकी कषाय के अनुसार परिणमन करे, आपके कारण नहीं। उनमें ऐसा भाव, पुत्रों में ऐसा भाव पैदा कि मैं अपने पिताजी की सेवा करूं, उनकी बात मानूं, ये पुत्र का कषाय है, वो हमारे व्यक्ति की ऐसा है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आती है बात? ये सामने वाले का वो कषाय है, हमें लगता है कि हमारे सारे अनुकूल बरत रहे हैं, देखो हमारे कैसा रुआब है, सब लोग हमारी मानते हैं, वो अपनी अपनी कषायों की मानते हैं, दूसरे का कोई नहीं मान रहा, यही कह रहे हैं यहाँ पर। वे अपनी कषाय के अनुकूल परिणमेंगे। शरीर मेरा बलिष्ठ रहे यानी बलवान रहे, कभी मैं वृद्ध न होऊं, यह बात होना कठिन है, क्योंकि शरीर भी परवस्तु है, उस पर मेरा कैसे अधिकार चल सकता है, उसमें रोग नहीं हो जाए, वो ऐसा बना रहे वैसा बना रहे, उसी के लिए कोशिश करते हैं, वो तो पर चीज है, उसका परिणाम तो वैसा होगा ही होगा। तो ये बात होती है कि आत्मलाभ करना सबसे सरल सहज बात है। अब कहते हैं आत्मलाभ से क्लेश का क्षय, वो गैप होनी चाहिए बीच में। क्लेश यानी दुख, ये दुख का नाश हो जाता है। एक आत्मा को छोड़कर अन्य सब बातें कर लेना, यह एक अनहोनी बात है, कठिन बात है। किंतु मैं पर का मोह न रखकर, पर का मोह क्या है? ये पर चीजें मेरी है, मैं उसको करने वाला हूँ, मैं उसको भोगने वाला हूँ, ये सारा पर का मोह है। तो मैं पर का मोह न रख कर केवल ज्ञान स्वरूप, ये केवल ज्ञान नहीं है, केवल यानी केवल सिर्फ ओनली मात्र ज्ञान स्वरूप अपने आप को निहारता रहूं। क्योंकि मेरे में कहां केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान की बात नहीं है पर्याय वाली। मैं कैसा हूं? ज्ञान मात्र हूं, यानी चैतन्य मैं ही हूं, राग मैं नहीं हूं। ज्ञान मात्र कहने से अन्य गुणों की बात नहीं रही है, सब गुणों को मिलकर ज्ञान कह दिया तो मैं चैतन्य यानी ज्ञान मात्र हूं, परंतु मैं राग रूप नहीं हूं। ये जो जानने में आ रहे उस रूप में नहीं, मैं तो जानने वाला हूं। ये यानी शरीर ये है वो मेरे जानने में आ रहा है, तो जो जाना उसको ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसे मान लिया, ये भूल हो गई। घर जानने में आ रहा है, क्या मान लिया? ये मेरा है, ये भूल उसकी यहां चल रही है। देखिए इसको कहते मैं पर का मोह न रखकर, मोह ने उनके प्रति ममत्व भाव मेरेपना की जो बुद्धि है मान्यता वो न रखकर केवल यानी ओनली ज्ञान स्वरूप अपने आप को निहारता रहूं। यानी अपने आप को कैसे देखना है? जैसा है वैसा। तो हम कैसे हैं? तो ज्ञान मात्र है, वैसा देखना है अपने को। शरीर तो अपने से जुदा ही है, क्योंकि कोई हम देखते हैं ना, अरे अभी अभी तो बात कर रहा था, अभी उसका प्राण निकल गया, वो जीव चला गया, ऐसा कहते हैं। यानी वो जीव जुदा ही था पहले से। यहाँ पर भी हम आप जो है, हम चैतन्य जुदे हैं और ये शरीर जुदा है। तो हम जो जुदे हैं तो कैसे हमारा स्वरूप क्या है? दिखता तो नहीं है तो कैसे मानेंगे हम है? लक्षण के द्वारा उसको पहचान। यह जो जानन 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 कार्य हो रहा है ये तो अपने को पता चलता है। आप कहेंगे आप क्या बोलते, कुछ नहीं समझता है। ये कुछ नहीं समझता किसको समझा? वो मैं हूं, वो समझने वाला मैं हूं। हमने वो कर्मकांड के शिविर में एक प्राइज रखा था वहां पर देवलाली में, जिसको कुछ नहीं समझेगा उसके लिए 5,000 रुपए का प्राइज रखा था। तो हम मिले एक जन, हमारी मेरी मौसी थी, उसने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया लास्ट दिन, मुझे कुछ नहीं समझा। मैंने बोला इतना तो समझा ना, हाँ हमारी कंडीशन कुछ नहीं समझने के लिए थी। तो अपने आप को निहारता रहूं इस सहज आनंद में ही मग्न। देखो सहज जो होता है, जो कोई यानी उसके लिए कुछ अन्य प्रयत्न नहीं करना है। ज्ञान आनंद हमारा स्वभाव है, और पर्याय में ज्ञान आनंद प्रकट होए ये भी सहज स्वभाव है। वो प्रकट होने के लिए कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है? जो हमने ऊपर से दबा के रखा है, क्या है? कल्पनाएं करके मैं शरीर रूप हूं, मैं राग रूप हूं, उसको हटाना है बस। बाकी आनंद तो स्वयं में प्रकट होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? वो बाहर ये जो बाकी फालतू की चीज खड़ी कर दी है उसको हमने अपनी मान के रखा है, वो मान्यता छोड़ दो। जो है उसको जानो मानो, बस यही पुरुषार्थ। मुझे वो सुखया नाम पुस्तक है ना, उसमें एक उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को दबा के रखा आपने, फोर्स लगा के दबा के रखा, अभी वो फोर्स निकाल दिया तो फिर स्प्रिंग को ऐसा खींच के वो निकालना पड़ता है बाहर, क्या होता है? अपने आप होता है। ऐसा ही यहाँ पर है, ये हमने कल्पना करके राग में अपने को मान कर अपने ज्ञान आनंद स्वभाव को दबा के रखा है, उसको प्रकट नहीं होने दे रहे। अभी वो कल्पना है, वो विकल्प हटा दो, वो तो ज्ञान और आनंद हाजिर है, वो स्वयं में प्रकट होगा पर्याय में। इतना सरल है, इसलिए उसको सहज कहते हैं। तो स्वभाव ही है उसका प्रकट होने का। तो सहज आनंद में ही मग्न रहो। कैसे हो? अपने आप को निहारने से। तो इसे कौन मेट सकता है? दूसरा कोई बाधक पुरुष हो, उसे रस्सी से भी कस लो तो उसकी ज्ञान दृष्टि को क्या कोई छीन सकता है? यानी कोई किसी को बांध के रख सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको तकलीफ दे सकता है, उसकी ज्ञान दृष्टि कैसे उसको छीन ले? ज्ञान तो हमारा अपना सहज स्वभाव है, उसको कोई छीन नहीं सकता। कोई राज्य कर्मचारी अने कोई जो ऑफिसर होगा अन्य कोई राज्य कर्मचारी समझते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिसर कोई है, कारागार के बंधन में भी डाल दे, यानी आपको जेल में भी डाल दे, और मैं वहां बंधन रहित ज्ञान स्वरूप का स्मरण करूं, क्योंकि मेरा ज्ञान स्वरूप, मैं तो चैतन्य हूं, उसने शरीर को डाल दिया कहीं किसी जेल में डाल दिया, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं और मैं तो निर्बंध हूं, बंधन रहित हूं, तो वहां बंधन रहित ज्ञान स्वरूप का स्मरण करूं तो मेरे लिए कहां कैद है कहां बंधन है। स्वामी जी ने तो ऐसा ही कहा था, ये तो सब स्वतंत्र ही है और ये स्वतंत्रता के लिए इतना पागल की तरह उसके पीछे लग रहे हैं, क्योंकि वो तो जमाना कौन सा था जब स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, परतंत्र का जमाना था और सारी यानी पूरा भारत भर यही चल रहा था नारा स्वतंत्रता के लिए, सारे क्रांतिकारी सब जगह आंदोलन चल रहा था बहुत बड़ा, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने आत्मा की बात इतनी और इतने लोग उनके पीछे थे। उस जमाने में भी कहते थे वो राजकोट में एक बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी उनके प्रवचन में आके बैठे थे, उनको क्या, उनका तो रेगुलर प्रवचन चल रहा था, क्योंकि सब स्वतंत्र ही है और ये स्वतंत्रता के लिए पागल उसके पीछे हो रहे हैं। तो दूसरी बार जब आए थे तो मेरे को मूर्ख कहने वाला कहाँ गए, वो संत कहाँ गए, ऐसा पूछ रहे थे। तो मेरे लिए क्या, कहाँ कह रहे, कहाँ बंधन है, मैं अपनी स्वरूप भावना से चिग कर यानी उसे छूट कर, उसे गिर कर। स्वरूप भावना का अर्थ होता है अपने को अपने स्वरूप रूप, जैसा स्वरूप है वैसे अपने को उस रूप भवन यानी उस रूप मानना, उसे में एकाग्र होना, उससे चिग कर यानी उससे गिर कर, हट कर। बाह्य पदार्थों में कुछ करने की कल्पना करता हूँ, इसका सारा क्लेश है। क्लेश और ये कुछ नहीं है, पर पदार्थों का परिणमन करना चाहता है, यही क्लेश है। क्लेश आता है तो आने दो, एक निजी ज्ञान स्वरूप को संभाल लो। क्या कहते हैं, ऐसी कल्पनाएं तो एकदम तो बंद होने वाली नहीं, वो तो आएगी, राग विकल्प आएगी, तो आने दो कहते, उसकी चिंता मत करो। क्या करना है, अपने ज्ञान स्वरूप को संभालो, क्योंकि वो जो कल्पनाएं हो रही है उसको भी जानने वाला मैं ही हूं, तो उसमें जानने वाला मैं हूँ, ये कल्पना मेरे से जुदे हैं, इतना तो नक्की कर सकते हैं। यही कह रहे हैं यहाँ पर, क्लेश आता है, क्लेश क्या है, ये जो कल्पनाएं कर रहा हूँ, तो आता है तो आने दो, एक निजी ज्ञान स्वरूप को संभाल लो तो वे सारे क्लेश ईंधन ज्ञान भावना की अग्नि से क्षणभर में भस्म हो जाएंगे। क्लेश कहीं भी नहीं है, यानी मेरा स्वरूप ही क्लेश रहित है। क्लेश क्या है, मैं राग द्वेष के जो परिणाम है, कल्पना है, वही क्लेश है, और मेरा स्वभाव इन राग द्वेष से रहित है, यानी क्लेश से रहित है। तो हम अपने स्वभाव की दृष्टि करेंगे, उसी को जानते रहेंगे, तो उसमें राग द्वेष तो है ही नहीं है, तो उठने पहले उठते थे वे भी नहीं उठेंगे, तो कहेंगे उसमें वो जल जाएंगे, नहीं उठना ही उसका नाश है। क्लेश रहित अपने ज्ञान स्वरूप को संभाल लो यानी उसको स्वीकार करो और उसी को जानते रहो, फिर कोई क्लेश की बात नहीं है। इस ग्रंथ में उसी आनंद धाम की बात का उपदेश किया जाएगा। आनंद धाम, धाम यानी वो घर का रेटन, घर आनंद का धाम है, जो सुनते समय भी कटु न लगे और धारण करते समय भी कटु न लगे। ये बात पहले बता चुके हैं, अभी दो दिन हम पढ़ रहे थे इसको, तो पहले तो मंगलाचरण किया, इष्टदेव को नमस्कार किया, फिर भोगियों के लिए बता रहा हूँ ये भी बताया, तो आगे बताते हैं कि यहाँ तो हित की ही बात कही जाएगी, दुख मेटने की और सुख प्राप्त करने की ही बात कही जाएगी। तो कहते तो डर मत, ऐसा मत सोच कि ये सुनने से मेरा जो वैभव वगैरह वो चला जाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा मत सोच कि ये कुछ कटु बात होगी। इसलिए बारंबार उसको धीरज बढ़ा रहे उसका, सुनने वालों का, अभी सुनाना चालू भी नहीं किया है उसके पहले ये सब बातें बताओ, आप पढ़ लेना पहले वाले जो एकदम आसान सरल बात है। हाँ, हे आत्मन, तू इस उपदेश से भय न कर। तीसरी गाथा में यही तो बताया था, देखो एक दो पेज पहले चलना। हाँ, रंच मात्र भी भय मत कर। छह नंबर के पेज पर तीसरे श्लोक के जो पहला पैराग्राफ है ना, उसके नीचे लास्ट लाइन कि कभी कभी ऐसे उसमें आपको लगेगा एक कटु जैसा, परंतु इसका फल अत्यंत मधुर है। फल क्या मिलेगा? तो आत्मिक आनंद मिलेगा। तो कैसे, तू रंच मात्र भी भय मत रख। अब आगे देखते हैं, अभी हम चार नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जना घनाश्च वाचाला सुलभा स्युरुत्थोत्थिता दुर्लभायन्तराद्रास्ते जगदभ्युज्जिहीर्षवः। प्रासंगिक संदेह निराकरण। संदेह ने शंका, कोई संशय आता है, डर लगता है। पूर्व के दो श्लोकों में गुणभद्र स्वामी, एक गुणभद्र स्वामी ये ग्रंथ के रचयिता है, आत्मानुशासन ग्रंथ गुणभद्र आचार्य ने लिखा है, और अभी हम जो प्रवचन पढ़ रहे हैं वो सहजानंद जी के, इनका नाम है मनोहर लाल जी वर्मा, सुखयाज पुस्तक के भी वही लेखक थे। पूर्व के दो श्लोकों में गुणभद्र स्वामी ने यह बताया था, हे आत्मन देख तू भय मत करना, जो तू चाहता है वह बात मैं कहूंगा। क्या चाहता है? वो सुख चाहता है, और यहाँ उसी का उपाय बताने वाले। तुम दुख से डरते हो और सुख चाहते हो, इस कारण मैं ऐसी ही बात कहूंगा जो दुख को दूर करे और सुख को उत्पन्न करे। किंतु संभव है, यानी ये पॉसिबल है, कदाचित उस प्रतिपादन में, प्रतिपादन करना नहीं कथन करना बताना, उपदेश में कोई बात कुछ कष्टदायक मालूम पड़े, कटु मालूम पड़े। क्यों कटु? क्योंकि यहाँ तो बताते ना, कोई किसी का नहीं है, प्रत्येक स्वतंत्र है, जीव ऐसा है। तो हमें तो परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत मोह है, अपना लगता है, ऐसा लगता है कि दुनिया के कैसे भी लोग हैं, हमारे तो परिवार के बहुत अच्छे हैं, तो उनको जब ऐसी बातें कहते तो कटु अंदर लगता है ना, अरे मेरे से भिन्न है, मैं अकेला हूँ, तो दुख लगने की संभावना है, पॉसिबल है। ये कह रहे कुछ करने में कठोर मालूम पड़े तो भी तुम डरना नहीं, उसका फल मीठा मिलेगा, मीठा मिलेगा। ये भी पहले उदाहरण का आ चुका है, जैसे रोगी को औषधि दी जाती है और कदाचित कड़वी लगे तो भी वह रुचिपूर्वक पीता है, क्योंकि उसकी समझ में है इस औषधि का विपाक यानी फल मधुर ही होगा, यानी उसका रोग मिट जाएगा। यहाँ शक हो सकता है कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो महाराज, पर कहने वाले लोग तो बहुत है, बहुत सारे उपदेश देने वाले मिलते हैं, बहुत आते हैं, लिख जाते हैं, हम कैसे समझे कि आप बात बिल्कुल सही और हमारे हित की ही करेंगे? क्योंकि आजकल तो ये तो उस जमाने में तो शास्त्र लिखे हुए पाए जाते थे, और इसलिए कहते लिखने वाले बहुत हैं। अब आज तो सुनाने वाले बहुत हैं, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, हमारे घरों में आके सुनाते हैं। टीवी ऑन करो तो चाहे जितना, तो कहते वो उसमें से अच्छी लगना बात अलग है और सच्ची होना बात अलग है। दुनिया का कल्याण करो ऐसा कुछ कहेंगे तो अच्छा लगता है ना, किसको बुरा लगेगा? परोपकार करो, दुनिया का भला करो, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बात कहाँ वो बताई जाती
लोग है। लोग आस्था से सुनते हैं,
आस्था से सुनते। तो कहते बहुत सारे कहने वाले बहुत लिख जाते हैं, यानी वो सही है कि इसका निर्णय हम कैसे कर सकते, ये बात पूछ रहे हैं। इस संदेह के उत्तर में मानो यह श्लोक कहा गया है। इस श्लोक में बताया है, ऐसे मनुष्य और ऐसे मेघ बहुत सुलभ है, जो वाचाल है बोलते बहुत है। ये मेघ भी बोलते हैं क्या? गरजते है ना मेघ, गर्जना होती है। मराठी में एक कहावत है, गर्जेल तो पड़ेल का है। आपके गुजराती में है क्या ऐसा कुछ? हाँ, गर्जा मेघ वर्षे में। मराठी में कहते गर्जेल तो पड़ेल का है, यानी जो गरजते है वो जो उसमें बारिश नहीं होती, खाली आवाज करते है, ऐसा ही कहते। मनुष्य भी ऐसे कोई वाचाल होते है बहुत। देखो यहाँ लिखा था हमने जो अभी पढ़ा था ना, जना घनाश्च वाचालाहा सुलभाहा स्युः वृथोत्थिताः। दुर्लभा ही अंतरार्द्रास्ते, अंतर से जो आर्द्र है, ये कथन दोनों के लिए ही लागू होता है। मेघ भी आर्द्र होते हैं ना, पानी वाले होते हैं, वो बात है। हर मनुष्य भी आर्द्र है ना, करुणा वाले होगी। जगत अभ्युजित शीर्षवः, यानी जगत का कल्याण करने वाले, अभ्युजित करने वाले। देखो अभी यहाँ से फिर बताएंगे वो अर्थ, यहाँ कहेंगे कि श्लोक में पेज नंबर 10 पर पहले पैराग्राफ नीचे से तीसरी लाइन, इस श्लोक में बताया है कि ऐसे मनुष्य और ऐसे मेघ बहुत सुलभ है, जो वाचाल है बोलते बहुत है, किंतु जो भीतर में गीले है। ये वाचाल है वो बहुत है, ऐसे बहुत है, किंतु जो भीतर में गीले है और लोगों के उद्धार करने की भावना वाले हो, या लोगोद्धार का जिनका विरध है ना, व्रत का विरुद्ध जिसको कहेंगे, विरध हो, ऐसे मनुष्य और ऐसे मेघ दुर्लभ है। अंदर से आर्द्र हो यानी अंदर से गीले हो, यानी बरसने वाले मेघ कम होंगे। ऐसे ही जो करुणापूर्वक हित का उपदेश देने वाले कम हो गए। मेघ के दृष्टांत पूर्वक उपकारी उपदेष्टा की दुर्लभता प्रतिपादन। देखो मेघ का दृष्टांत दे रहे हैं, यानी उसका मेघ के द्वारा ये उपदेश करने वालों की बात समझा रहे हैं। उपकार यानी जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले, उपकार करने वाले, ऐसे उपदेष्टा। उपदेष्टा का अर्थ क्या है? उपदेष्टा है ने क्या? उपदेश देने वाले, वो उपदेष्टा, जो जानता है वो ज्ञाता कहते ना, देखते वो दृष्टा, ऐसे उपदेश देने वाले उपदेष्टा, उसकी दुर्लभता का प्रतिपादन कर रहे हैं। यानी ऐसे रेयर है, दुर्लभ है ने रेयर। जैसे मेघ गरजने वाले बहुत होते हैं और व्यर्थ ही उठे हुए होते हैं, उनसे बूंदें नहीं टपकती और व्यर्थ ही लोगों को भय पैदा कराकर नुकसान पैदा कर जाते हैं। कहीं बाहर जाना हो तो भाई समय खराब है, देखो मेघ कैसे उठे हुए हैं और कैसा गरज रहे हैं, उसका बाहर जाना रोक दिया उन मेघों ने, उसका नुकसान किया। और जो बरसने का सट्टा लगाते हैं, उनका भी ये गरजने वाले मेघ नुकसान करते हैं। समझ में आई? अभी होगा ना वो बेट लगाते हुए वाली वो सट्टा लगा। तो हम कहाँ गए थे राजकोट में? कहाँ गए थे हम, आपको याद है? वह ऐसी गली है पूरी, वो लॉटरी सट्टे की। हाँ, कुछ भी, अभी उसके लिए कोई भी कारण चलता है, कुछ भी हो, कोई ट्रेन भी लेट आने हो या कुछ भी जो चलता है उसके ऊपर सट्टा चलता है वहां पर। तो यहाँ तो क्या कह रहे, यानी वो मेघ देखकर लोगों को लगता है अभी बरसेंगे, उस पर भी सट्टा चलता है कह रहे। तो कहते जो बरसने का सट्टा लगाते उनका भी ये गरजने वाले मेघ नुकसान करते हैं। मेघों की शक्ल सूरत निरखकर सट्टा लगाने वाले लोग सट्टा लगाकर नुकसान में आते हैं। और व्यर्थ के गरजने वाले मेघ आशावान किसानों की आशा पर कुठाराघात कर देते हैं। कुठाराघात करना है कुराड़ी से उसका घात करना, कुठाराघात के यानी उनकी आशा पर वो पानी फेंकते। अभी पानी फेरने के लिए उनके पास पानी नहीं है, इसलिए इन मेघों से क्या फायदा है जो व्यर्थ ही उठे हैं और गरज रहे हैं। ऐसे मेघ बहुत मिलते हैं। जितने दिन मेघ उठे हो उतने दिन कभी पानी बरसा है क्या? मेघ उठे उसका आठवां भाग भी यदि कदाचित पानी बरसता है। ऐसे मेघ बहुत मिलते हैं, किंतु जो मेघ अपने अंतर में भी गीले हैं, अर्थात जिनमें पानी भरा हो, जिनसे पानी बरसता हो और लोगों का उद्धार कर देने वाले हो, ऐसे मेघ दुर्लभ है। ये तो उदाहरण हुआ पूरा दृष्टांत। ऐसे ही समझे कि बोलने वाले बहुत आते हैं, लिख जाते हैं, वाचाल और व्यर्थ ही अपनी महंतता प्रकट करने के लिए, महंतता ने बड़प्पन, उद्धृत भी है उद्घृत भी है, बहुत आते हैं ठीक है, किंतु ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है जो अपने अंतरंग में भीगे हुए हो। भीगे हुए नहीं, वो तो करुणा भाव है और वो स्वयं ज्ञानी हो और अपनी वाणी से जगत के उद्धार करने का भी यत्न करते हों। श्रोताओं के उपकार के लिए अपार करुणा का आशय। ये कोई किसी का उपकार अपकार नहीं करता, वो बात यहाँ नहीं ले रहे। ये जो है ना कि भव्य जिनों के मोक्ष का यहाँ उपदेश दे रहे हैं, तो ये उनके प्रति उपकार हो रहा है, यानी वो व्यवहार की भाषा में उसको उपकार करें। श्रोताओं के उपकार के लिए अपार करुणा का आशय। हितमय और हितकारक वक्ता की दुर्लभता कहने में आचार्य महाराज का क्या आशय है, यानी वो अभिप्राय क्या है, उनका क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे उनका रहस्य क्या है? इस आशय को ग्रहण करना विवेकी पुरुष का ही काम है। इस श्लोक में यह नहीं झलक रहा है कि यह आचार्य वक्ता श्रोताओं के हृदय में यह बात बैठाल रहे हैं कि ऐसे वाचाल सुलभ होते तो है, किंतु हमें उन जैसा नहीं समझना। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो जगत का उद्धार कर सकते हो और खुद भी ज्ञान वैराग्य से वासिक हो। दुर्लभ है पर मिलते हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कहा, दुर्लभ है फिर भी मिलते हैं। देखो आचार्य महाराज जीवों पर दया करके और अपने दिल को भी महसूस करके, अपने दिल की बात के भी विरुद्ध जहाँ नम्रता बताना चाहिए, अपने आप की लघुता बतानी चाहिए, वहाँ आचार्य यह कह दे कि यह भी संदेह न करना कि उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, हम क्या सुने। अरे जो यथार्थ उपदेश दे, यथार्थ में भीगे हुए हो, जगत का उद्धार कर सके, उनमें समझना कि इतनी बात दिल महसूस करके कही गई होगी। कितनी अपार दया है आचार्य देव में कि हमारी बात से श्रोताओं का उपकार हो, इससे इतनी बात अपने मुख से ही कह देते हैं। यह बड़ी करुणा भरी बात है। लोग तो यह कहते होंगे कि अपने मुख ऐसी बात कहना यह तो अच्छा नहीं, यानी अपनी बड़प्पन अपनी बड़ाई कर रहे तो ऐसी बात नहीं है। वो स्वयं बता रहे कि ऐसे उपदेश देने वाले तो बहुत मिलेंगे, उनको जिनका हृदय करुणा से भीगा हुआ है और सच्चा उपदेश देने वाले दुर्लभ है। खुद बीती बात से ग्रंथ प्रणेता के आशय का अनुमान। कुछ वर्षों से चातुर्मास के दिनों में हम एक क्लास लगाते रहे हैं, यानी वो अपने पर जहाँ बीती थी उसके अनुसार वो ग्रंथकर्ता का अनुमान, यहाँ वो क्या कहना चाहते उसका अनुमान ये स्वयं सहजानंद जी लगा रहे और विधिवत पढ़ाते रहे हैं, और पढ़ने वाले सज्जन 3 माह में 3-4 बार बराबर पढ़ जाते हैं। यानी वो चातुर्मास के दिन कहीं एक जगह एक गांव में रहना होता था तो दिन में 3-4 बार बराबर ना, दिन में 3-4 बार तो पढ़ाते थे और अनेक लोग उसका फायदा भी लेते थे। तो प्रथम 10-15 दिन पढ़ने में जब मन नहीं लगता है पढ़ने वालों का, तो उनके दिल को संभालने के लिए कई बार तो यह खुद भी कहना पड़ता है कि भाई पीछे पछताओगे, ऐसा बढ़िया पढ़ने का अवसर तुम्हें फिर मिलना कठिन है। क्योंकि ऐसा है ना, जहाँ जाते तो थोड़े ही सब लोग अपना अपना काम छोड़कर आएंगे, फिर भी वहाँ बताना पड़ता है कि ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, आना जरूर। इस तरह कहकर उनके दिल को पढ़ने में लगाते हैं, यानी एक बार आना चालू करते तो आगे तो वो तो चलते ही रहते, परंतु शुरुआत में जरा उनको बताना पड़ता है कि आओ तो सही, देखो तो सही। फिर 15 दिन बाद तो पढ़ने वाला खुद अपने आप क्लास में आता है, फिर हमें जोर नहीं पड़ता। लोग कठिन समझकर पढ़ना छोड़कर घर न बैठ जाए, इसके लिए मुख से अपनी प्रशंसा की बातें दुख के साथ कहनी पड़ती। ये कोई प्रशंसा उसका उद्देश्य नहीं है, फिर भी प्रशंसा करके लोग आए तो सुने तो सही, ऐसा कहना पड़ता। ऐसा हम पर भी बीतता है, ये स्वयं कह रहे हैं। फिर आचार्य देव तो महान से भी महान है, वे इस महान शिक्षाप्रद आत्मानुशासन ग्रंथ में बड़ी करुणा करके यह बात कह रहे हैं। आचार्य देव का नीति रीति रूप में कथन। आचार्य देव इस श्लोक में प्रकट यह नहीं कहते हैं कि हमारा उपदेश यथार्थ और भीगा हुआ होगा। जो दुर्लभ जन है उनमें से हम हैं ऐसा आशय भी न लेना, बल्कि श्लोक से सीधा भाव यह निकलता है कि व्यर्थ गरजने वाले व्यक्ति तो सुलभ है, किंतु जगत का आदर कर सकने वाले और खुद भी अंतरंग में भीगे हुए हो ऐसे व्यक्ति दुर्लभ है, इतना ही अर्थ है इस श्लोक का। लोग अपने हित में स्वयं ही सब कुछ पहचान जाते ही है। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी जनों के शिक्षण के लिए और जो विरक्त नहीं है ऐसे प्राणियों का धर्म में चित्त लगाने के लिए ऐसा भी कह सकते हैं, और ऐसा कहने में उनमें करुणा भरी है। उनको कुछ अपना बड़प्पन नहीं बताना है, पर वो जानते हैं ना कि पहले हमें भी ये मालूम था, नहीं था, अभी मालूम हो गया तो हमारा कल्याण हुआ, तो ये सहज भाव होता है कि ये बात पूरा जगत सुने। इसलिए वो शुरुआत में तो जैसे कहेंगे ना, आओ तो सही, सुने तो सही, कभी कभी ज़बरदस्ती भी, हम भी अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं की थी क्या स्कूल में डालते समय? अभी तो क्या 2.5 साल का बहू या 2 साल का, उसके भी क्लास और क्या 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 चालू है सब, तो वो तो शुरुआत में रोता है बच्चा, फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ के बिल्कुल, माँ भी इतनी दयालु कहलाती, वो भी वो अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़कर वापस चली आती, कितनी निर्दयी होगी ना वो माँ। क्योंकि एक भाव के लिए और बच्चा पढ़कर अच्छा कुछ सीख ले, कुछ बड़ा बन जाए, इसलिए वो तो शुरुआत में तो कर नहीं पड़ते है ना। और यहाँ तो भवो भवों का अभाव करने की बात है। मोक्ष जैसा उत्कृष्ट फल जिसमें मिलने वाला है उस बात के लिए तो यहाँ तो जबरदस्ती भी करेंगे, कुछ उनको कहेंगे भी या धीर भी धीरज भी बजाएंगे कि डरो मत, ये करो, सुनो तो सही है ना, तो ऐसा कहने में उनमें करुणा भरी है। यदि जीवों के उद्धार करने की इतनी अधिक उनके हृदय में वेदना न होती, देखो ये भी राग है और ये भी वेदना, ये भी दुख रूप है, तो ऐसी बात वे न कह सकते थे। ऐसी बात सुनकर आचार्य देव की कृपा निरतता समझकर उनके प्रति हमारी भक्ति और अधिक बढ़ती है। हितोपदेष्टा की भावना, यानी हित का उपदेश देने वाले की क्या भावना है वो बता रहे हैं। निरत ने लगातार ना कृपा की, आचार्य देव की कृपा निरतता समझकर, क्या अर्थ होता है निरतता में, क्या लेना है निरंतर, वो लगातार बन निरत उसमें है। हितोपदेष्टा की भावना इस ग्रंथ में आगे चलकर वक्ताओं का स्वरूप आएगा कि वक्ता किस तरह का होना चाहिए। हमने बहुत बार इसको देखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी और अन्य अन्य ग्रंथों में भी, कैसे होते हैं, कैसे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कोई मच्छर जैसे होते हैं, कोई भैंसे जैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्णन किए हैं। अभी यहाँ पर भी करेंगे। कोई तो शांति से सुनने वाले होते हैं, कोई सभा में उठकर प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनको तो सभा को डिस्टर्ब करना होता है। श्रोता की बात, नहीं मैं श्रोता की बात कर रही हूँ, वो वक्ता की भी बताए। हाँ, ये यहाँ वक्ताओं की बात है, मैं श्रोता की बात कर रही थी। वक्ता की भी बात आती है, वक्ता भी कैसे होना चाहिए, कि अपना महंतता दिखाना चाहता है, कि लोग का प्रयोजन है, कि क्या है उसका, वो भी अलग अलग प्रकार के बता रही हैं। यदि वक्ता में वे गुण न हो तो श्रोताओं को एक बार तो बुरा लगेगा ही, पर क्या आचार्य देव किसी को बुरा लगने के लिए बात कहते हैं? श्रोताजन यथार्थ वक्ता का स्वरूप जान जाए और उन्हें यह विश्वास हो जाए कि मैं यथार्थ वक्ता हूँ, तो इससे श्रोताओं का उपकार है। देखो, ये वक्ता के स्वरूप जानने से वो वचन की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। वो मूल वक्ता तो आचार्य ये अपने सर्वज्ञ भगवान है, तीर्थंकर आप तो जिनको कहते हैं, तो उनकी उनका स्वरूप जब हम नक्की करते हैं तो उनके वचन कैसे प्रमाण है उसकी बात सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर भी ये बोलने वाले कौन है? आचार्य है। उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे है, उसको जानकर, वक्ता को जानकर, फिर उनके जो वचन है, उनका जो उपदेश है, उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है, उस पर विश्वास कर लेते हैं लोग। यानी जब उनको विश्वास हो जाए कि मैं यथार्थ वक्ता हूँ, तो इससे श्रोताओं का उपकार है। वक्ता का क्या उपकार? क्या कहते हैं? ये वक्ता का स्वरूप वक्ताओं के लिए नहीं बता रहे, वो श्रोताओं अगर वक्ता का स्वरूप जान जाते हैं तो उनके मन में कोई संदेह नहीं रहता। ये श्रोताओं के उपकार के लिए, तो श्रोताओं के उपकार के लिए श्रोताओं के चित्त में जो संदेह उठता है, उस संदेह का निवारण करना हितोपदेशी व्यक्ति का कर्तव्य है। संदेह ने डाउट कोई वक्ता के बारे में, कथन के बारे में, कि किसी प्रकार उस शंका का निवारण हो। ज्ञान का ज्ञान निधि में मिलन पर एक दृष्टांत। भैया, ज्ञान की महिमा अतुल है। अतुल ने इसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं होती, अतुलनीय तोल उसका बराबर किसी के साथ नहीं होता। ज्ञान की महिमा तब जानी जा सकती है जब यह ज्ञान जहाँ से उठा है उसी में मिलने का यत्न करे। ज्ञान कहाँ से होता है? बाहर से होता है ना? हाँ, द्रव्य में से पर्याय उठती है। ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान उठता है, बाहर से नहीं आता है। तो कहते जब यह ज्ञान जहाँ से उठा है उसी में मिलने का यत्न करे तो ज्ञात हो सकता है कि ज्ञान की महिमा कितनी है। इस चीज में से तो कोई ज्ञान नहीं उठ रहा है, ज्ञान तो मेरे में से उठ रहा है, तो ये मेरी महानता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान जहाँ से निकलता है, निकलता हुआ वह ज्ञान मुड़ करके और उसी स्रोत में मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो कहते होता है। क्या कहते हैं? जहाँ से ज्ञान निकले, तो ज्ञान निकले पर पर को जानता हुआ वो जान रहा है, कार्य कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है जहाँ से निकले उसी को जानेगा, ऐसा हो सकता है? तो कहते होता है। स्रोत यानी उसमें, उसी स्रोत में मिल जाए, ओरिजिन में, उसी में। देखो, यह जल जो बरसता है, इस जल की कहानी आपने सुनी होगी। इस जल का काम क्या है? जहाँ से निकले वही मिल जाना इस जल का काम है। जब गर्मी के दिन होते हैं तो बड़ा तेज आता संताप के कारण समुद्र में से जल निकलता है भापों के रूप में, और वह भाप सघन बनकर बादलों का रूप रखती है, और 5-7 माह के बाद उनमें ऐसी योग्यता आती है कि वे मेघ बरसते हैं, और बरसकर यह जल नीचे की ओर ढुलकता है, नदियों में पहुंचता है। नदियां भी उस ओर ढलती हुई होती है जहां नीचा भी हो, वह समुद्र है, और नदियों के माध्यम से वह जल समुद्र में ही मिल जाता है, जहां से निकला वहीं पर पहुंच जाता है। जैसे समुद्र से उठा हुआ जल समुद्र में ही मिल जाए, ऐसा संभव है। ऐसा भी संभव है कि कोई जल बीच में ही कुछ समय को अटक जाए, पर अंत तो गत्वा एंड एट द एंड, किसी न किसी प्रकार जहां से उठा उसी में मिल जाता है। कैसी उस जल की प्रकृति है, जहां ढाल मिली, ढाल ने स्लोप, हाँ, नीचे की ओर ढलान, उस ओरी चल दे, यह जल की प्रकृति है, अर्थात उसके विनयशीलता की प्रकृति है। नीचे को चलना इसका नाम है विनय। यह जल अपनी बड़ी विनय रख रहा है, उस विनय के कारण यह पानी जिस महानिधि से निकलता है, निधि ने उसका पूरा समूह, निधि खजाना, उसी निधि में मिल जाता है। अब ज्ञान का ज्ञान निधि के मिलन से संभूत ज्ञान की महत्ता का परिचय, संभूत यानी प्राप्त। भैया, जल की भांति ही यह ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा से निकलता है। यह ज्ञान यानी जो पर्याय है, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा में से निकली, अर्थात इस ज्ञान में आत्मा की परिणति है। निकलना यो कहा कि जो ज्ञान पर्याय रूप में आया है और निकलकर बाहरी पदार्थों में घुलमिल रहा है, यानी उसका अपना क्षेत्र तो छोड़ा नहीं है, उसका लक्ष्य बाहर की ओर है, उनमें अटक रहा है, उनको जान रहा है। वही ज्ञान यदि अपनी विनय प्रवृत्ति बना ले, अर्थात यह उठा हुआ ज्ञान, पर पदार्थों में मिला हुआ ज्ञान अपनी विनय प्रकृति से अपनी ही ओर झुककर, हम कहें अपने में नत होना, अभी ये विनय भाषा अलग अलग वहां पर है, यानी अपनी ही ओर झुककर दृष्टि करे, तो यह ज्ञान बाहर से हटकर अपने स्रोत में मिलकर, स्रोत यानी जहां से वो निकला है ओरिजिनल, अनंत आनंद का अनुभव कर सकता है। तब यह ज्ञान समझेगा कि ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म की क्या महिमा, इसको परम ब्रह्म कहा, आत्मा को ही परम ब्रह्म, यथार्थता का प्रतिपादन, यथार्थ यानी सही। यहां दृष्टांत में अंतरंग में जल से भीगे हुए बादलों की कहानी में आचार्य देव यथार्थ ज्ञान वाले व्यक्ति की दुर्लभता कह रहे हैं। एक चीज और है, भले आदमी को केवल भला किस लिए कहते हैं, क्या होता है, इसका व्याख्यान करने मात्र की जरूरत होती है। उसे यह कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें यथार्थ उपदेश देंगे, इसके कहने की जरूरत नहीं होती। इसी नीति के अनुसार आचार्य देव वक्ता की दुर्लभता बता रहे हैं। विपाक मधुरता के कारण कटु औषधि का पान भी आवश्यक, विपाक है ने उसका फल, उसका, हाँ, हम कर्म में विपाक है ने उदय कहते हैं, परंतु यहाँ विपाक किसी औषधि सेवन का विपाक है ने क्या, उसका फल क्या मिलेगा, तो रोग नष्ट हो जाएगा। तो विपाक मधुरता के कारण कटु औषधि का पान भी आवश्यक। आचार्य देव ने यह आश्वासन दिया था, देखो तुम दुख से डरते हो, सुख चाहते हो, तो तुम्हारे मन माफिक ही बहुत मधुर तत्व का उपदेश करेंगे, कदाचित उसमें तुम्हें कोई बात कटु भी मिले। नियम तप संयम संन्यास परिग्रह का छोड़ना, कोई उपदेश तुम्हें कटु लगे, बोझ लगे, बोझ तो है ही नहीं, बल्कि बोझ को हटाने वाली बात है। लेकिन जो बोझ में ही अनुरागी है, क्या कहा? बोझ में ही अनुरागी है ना सारे अभी। तो जो बोझ में ही अनुरागी है उसे बोझ तो सुहाता है, और बोझ न रहे ऐसी बात पर विश्वास नहीं होता। तो तुम्हें यदि कुछ कटु मालूम पड़े तो आंखें मीच कर उसे भी पी जाना, छोड़ना नहीं। ऐसी कोई बातें हैं तो सुनो तो सही, उस पर विचार तो करे, कि छोड़ो मत, उपदेश को मत छोड़ो कह रहे। जैसे रोगी लोग कटु औषधि को आंखें मीच कर पी जाते हैं, भला बतलाओ तो औषधि ने आंखें मीची है क्या? क्यों उसको आंखें मीच कर पी जाते हैं? कितनी कड़वी दवा हो तो आंखें मीच कर पीते हैं। कहते आंखों का उद्दंडता वृद्धि में सहयोग। उद्दंडता समझते, स्वच्छंदता, जो चाहे जैसा बिहेव करना वो उद्दंडता होती है। ये आंखें सब उद्दंडों की उद्दंडता में सिरताज है। सिरता समझते ना, मुकुट है। अगर आंखों से देखने का योग मिले तो ये चार इंद्रियां तेज उद्दंड हो जाती हैं। कभी आनंद से कानों से गाना सुन रहे हैं तो आनंद तो सुनने में ही आता है, पर आंखों देखे बिना चैन नहीं पड़ती है। कौन गा रहा है, किस तरह बैठा है, कानों से सुन रहे हैं उसका कुछ मौज तो मिल रहा है, पर आंखों से देखे बिना चैन नहीं पड़ती। यह आंखें मौज में कुछ गुणा जरूर लगा देती हैं। यह आंखें उद्दंडता में सिरताज है। इत्र भी सूंघते हैं नाक से, तो उसके द्वारा मौज मानने की बात बनती तो है नाक द्वारा, पर आंखों देखे बिना नहीं मानते हैं। उसकी मौज में ये आंखें कुछ गुणा जरूर कर देती हैं। ऐसे ही आंखों देखकर मधुर चीज खाने में और आंखों देखकर स्पर्शन इंद्रिय का भोग भोगने में उद्दंडता बहुत अधिक हो जाती है। अब आंखों की उद्दंडता के निवारण में विधि का सहयोग। ये आंखें बहुत उद्दंड है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि विधि ने पहले से ही एक सहूलियत भी दे दी है। विधि यानी नेचर, प्रकृति। इन आंखों के ढकने के लिए दो ढक्कन लगा दिए हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। सबकी आंखों में दो दो ढक्कन लगे हैं जिन्हें पलक कहते हैं। अरे भैया आप कष्ट क्यों भोगे, उन ढक्कनों का उपयोग कर ले, आंखें मीच ले, सारे संकट और सारी विडंबनाएं मिट जाएगी। ये ढक्कन कितना विशिष्ट काम देने के लिए मिले हैं। ऐसे ही इंद्रियों में यह मुंह भी बड़ा चंचल है और उद्दंड है। हो गया समय, हो गया, कल पढ़ेंगे इसको।
कहां से?
ये आंखों की उद्दंडता। जावानी के ज्ञान ते सू